आगे सबक देखिए भाई, तुम यतलुबु इंदा काजिन फयकूलु इश्तरा फुलानुन दारन कजा व अना शफीउहा बिदारिन कजाली फमुरहु युसल्लिम इलैया وهو طلب تمليك وخصومة وبتأخيره لا تبطل الشفعة. وقال محمد رحمه الله تعالى إذا أخره شهرا بطلت وبه يفتى. بس شفا کا باب ہم نے کل شروع کیا تھا اور آپ نے پڑھا تھا کہ شفا کے اندر تین طلبیں ضروری ہیں. نمبر ایک طلب مواسبت ہے, نمبر دو طلب تقریر یا طلب اشہاد ہے, اور نمبر تین طلب خصومت یا طلب تملیک ہے یا طلب اخذ ہے. بھائی الف خا دال اخذ بھائی. تو دو طلبوں کی تفصیل بیان ہو گئی تھی کل کے سبق کے آخر میں, طلب مواسبت بھی بیان ہوا اور طلب اشہاد بھی. اب طلب خصومت بیان کرنے لگے ہیں, وہ کیسے کریں گے؟ اس کا طریقہ آپ کو بتلا رہے ہیں کہ بھائی اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ قاضی کے پاس جا کر اب مقدمہ کریں اور قاضی سے کہیں کہ قاضی صاحب کہ فلاں آدمی نے فلاں گھر خریدا ہے اور میں اس گھر پر شفے کو طلب کرتا ہوں اپنے اس گھر کی وجہ سے جو اس کے ساتھ ہے, یعنی میں اس کا پڑوسی ہوں, لہذا اب آپ اس مشتری کو حکم دیں کہ وہ گھر میرے حوالے کر دیں, یا اس بائے کے اگر قبضے میں ہے تو بائے کو آپ حکم دیں کہ وہ گھر میرے حوالے کر دیں. دیکھیے بھائی کتاب پر, ثم یطلب عند قاض, پھر وہ طلب کرے گا قاضی کے پاس, یہ تیسری طلب آ گئی. فیقول, پس یوں کہے گا, اشترا فلان دارا کذا, کہ فلاں نے خریدا ہے ایسا گھر, وَأَنَا شَفِعُهَا بِدَارٍ كَذَا لِي, اور میں اس پر شفا کرتا ہوں, میں اس کا شفیع ہوں ایسے گھر کی وجہ سے, بِدَارٍ كَذَا لِي, ایک ایسے گھر کی وجہ سے, لی جو میرا ہے. بھئی بتائے گا نا کہ یہ وہ گھر میرے گھر کے ساتھ ہے, وہ فلاں گھر بکا ہے فلاں جگہ پر فلاں محلے میں فلاں گلی میں فلاں پلاٹ نمبر, وہ گھر بکا ہے اور اس کے ساتھ والا گھر جو ہے وہ میرا ہے, میں اس کا پڑوسی ہوں, تو اس گھر کی وجہ سے میں وہ جو گھر فروخت ہوا ہے اس پر کیا کرتا ہوں, شفا کرتا ہوں, شفا طلب کرتا ہوں. تو اب آپ ان کو حکم دیں کہ وہ گھر میرے حوالے کر دیں, میں طلب مواسبت بھی کر چکا ہوں اور طلب اشہاد بھی کر چکا ہوں. فیقول, تو یوں کہے گا قاضی سے کہ اشترا فلان دارن قضا, کہ فلان نے ایسا گھر خریدا ہے, جگہ بتائے گا, وانا شفیعہا بدارن قضا لی, اور میں اس پر شفا کرتا ہوں ایسے گھر کی وجہ سے جو میرا ہے. وجہ بتائیں کہ میں کیوں شفیع ہوں, مجھے حق شفا کیوں ہے, کیونکہ میں اس کا پڑوسی ہوں ایسے گھر, تو اس گھر کے ساتھ والے گھر کی وجہ سے میں اس پر شفا کرتا ہوں جو میرا ہے. فمرہ, ہمارا امرو کا معنی حکم دینا, فمرہ, پس آپ اس کو حکم دیجئے مشتری کو, جو بھی آپ کا فریق مخالف ہے جس پر بھی آپ نے دعویٰ کیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی؟ یہاں دیکھو, اگر تو صاحب ید بائع ہے, بائع کے پاس ہی ابھی وہ مکان, اس نے مشتری کے حوالے نہیں کیا, تو آپ بائع پر کے ساتھ بھی خصومت کر سکتے ہیں, اس کو بھی قاضی کے پاس لے جا سکتے ہیں. اور اگر مشتری کو لے جانا چاہے تو مشتری کو بھی لے جا سکتے ہیں, کیونکہ وہ مالک ہے بھائی. تو فمور ہو, آپ اس کو حکم دیجئے, یوسلیما ایلیا, یوسلیما ایلیا, کہ وہ اس گھر کو میرے سپرد کر دے. سلم یوسلیم التسلیم کا معنی سپرد کرنا, حوالے کرنا. فمور ہو, آپ اس کو حکم دیجئے, یوسلیما ایلیا, کہ وہ اس کو میرے حوالے کر دے. وہ ہوا طلب تملیک و خصومتین, اور یہ طلب تملیک اور طلب خصومت ہے. میں نے اس کا ایک تیسرا نام بھی بتلایا تھا, اور وہ کیا؟ طلب اخذ ہے بھائی. وہ بھی تاخیر ہی لا تبطل الشفعۃ, اور اس طلب میں تاخیر سے شفا باطل نہیں ہوتا. شیخین رحمہم اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اس طلب میں تاخیر سے بھی شفا باطل نہیں ہوتا. وقال محمد رحمہ اللہ, اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اذا اخرہ شہرن, اگر اس نے شفیع نے مؤخر کیا اس طلب کو شہرن ایک ماہ, بطلت, تو اس کا شفا باطل ہو جائے گا. وبہی یفتا, اور اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے. شیخین رحمہم اللہ تو کیا فرماتے ہیں کہ حق شفا اس کا پکا ہو گیا, جب اس نے طلب اشہاد کر لیا اب اس کا حق کیا ہو گیا, پکا ہو گیا. اب خصومت میں تاخیر بھی کر دے, دیر سے بھی قاضی کے پاس جائے تو کوئی حرج نہیں, اس کا حق ساقط نہیں. جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں, تاخیر کی اب بھی اجازت ہم نہیں دیں گے, ورنہ تو جو مشتری ہے وہ بیچارہ کوئی اس میں نہ تعمیر کر سکتا ہے نہ کوئی کام کروا سکتا ہے, وہ تو انتظار میں ہے کہ اب کیا کرے گا, شفا کر کے قاضی کے پاس جائے گا اور مجھ سے زمین لے لے گا. تو لہذا وہ فرماتے ہیں کہ بس ایک مہینہ ہے, ایک مہینے میں اگر خصومت کرنی ہے کر لو, زمین لے لو, اور اگر ایک مہینے تک تم قاضی کے پاس نہیں گئے تو تمہارا حق شفا کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا بھائی. اور اسی پر فتویٰ ہے, خاص کر آج کل تو فتنے کا زمانہ ہے, لوگوں کے پاس نے زمین لینی نہیں ہوتی, بس دوسرے کو تنگ کرنا ہوتا ہے, تو وہ تو طلب اشہاد کر لیں گے اور پھر آرام سے بیٹھے رہیں گے, مہینوں پہ مہینے گزر رہے ہیں اور وہ مشتری بیچارہ پریشان ہے کہ بھائی لینی ہے تو لے لو, مجھے میرے پیسے واپس مل جائیں گے اور میں پھر کوئی اور کام کر لوں گا. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. وَإِذَا طَلَبَ سَأَلَ الْقَاضِ الْخَصْمَ عَنْهَا, اب قاضی کے پاس مقدمہ کیسے چلے گا بھائی؟ اللہ آپ سب کو بڑا عالم بنائے, اچھی طرح سیکھ لیں بھائی, انشاءاللہ جلد ہی اسلامی نظام اللہ نصیب فرمائیں گے, آپ قاضی بنیں گے, آپ کے پاس لوگ مقدمات لے کر آئیں گے, اب مقدمات کیسے سننے ہیں, کیسے ان کا فیصلہ کرنا ہے, تو وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اب یہ شفے کا مسئلہ آیا تو قاضی کیسے فیصلہ کرے گا, کیسے مقدمہ سنے گا؟ تو خلاصہ سن لیں بھئی, جب قاضی آپ قاضی ہیں, آپ کے پاس مقدمہ آیا شفے کا, تو قاضی سب سے پہلے ان زمینوں کا حدود اربع پوچھے گا, حدود اربع, چاروں طرف کی حدود, یعنی پتہ لگے کس زمین کی بات ہو رہی ہے, اس کے دائیں کیا ہے, بائیں کیا ہے, آگے کیا ہے, پیچھے کیا ہے. تو وہاں پوری پھر تفصیل بیان کرے گا وہ کہ قاضی صاحب شہر کا فلاں علاقہ ہے, اس کے اندر فلاں محلہ ہے, فلاں گلی ہے, گلی نمبر فلاں, اور اس گلی کے اندر فلاں نمبر جو مکان ہے وہ بیچا گیا ہے, اور اس کے ساتھ والا یا اس کے سامنے والا جو فلاں مکان ہے, فلاں نمبر اسی گلی میں, وہ میرا ہے اور میں اس کی وجہ سے اس پر کیا کرتا ہوں, شفا کرتا ہوں. پوری وضاحت ہوگی کہ مکان کی تعیین ہو جائے, بھائی تعیین ضروری ہے, جب تک تعیین نہیں تو مجہول چیز, جس کا علم ہی نہیں ہے اس کا مقدمہ کیسے چلے گا بھائی. تو پوری مکمل تفصیل ہو, جس کو دیکھ کر کوئی بھی آدمی اس مکان تک پہنچ سکے کہ ہاں اس مکان کی بات ہو رہی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو سب سے پہلے اس مکان کی تعیین کی جائے گی جس پر شفا کیا جا رہا ہے, اور اسی طرح جو شفا کرنے والا ہے شفیع, اس کے بھی مکان وغیرہ کی تعیین کی جائے گی. یہ تو پتہ لگ گیا یہ والا مکان ہے اس پر شفا کیا جا رہا ہے, اور ساتھ والا مکان ہے جس کی وجہ سے شفا کیا جا رہا ہے, وہ سبب شفا ہے ساتھ والا مکان, کیونکہ وہ پڑوسی ہے, جار ملاصق ہے. اب قاضی کا کام ہے وہ یہ پتا کرے کہ یہ ساتھ والا مکان اسی شفیع کا ہے بھی کہ نہیں. بھئی اس کا ہے تو پھر تو یہ شفا کر سکتا ہے, اگر اس کا مکان ہی نہیں ہے تو پھر یہ شفا کیسے کرے گا. سب سے پہلے کیا کیا جائے گا, ان مکانوں کی تعیین, پھر اس کے بعد اس بات کی تعیین کی جائے گی کہ یہ اس مکان کا مالک ہے, یہ واقعی یہ شفے کا حق اس کو ہے, حق ہے. اس کے بعد جب یہ بھی پتا چل گیا کہ مکان کون سی جگہ ہے, پھر یہ بھی پتا چل گیا کہ ساتھ والا مکان واقعی شفیع کا ہے, یہ بھی پتا چل گیا, अब काजी वो जो मुश्तरी है उससे पूछेगा कि हां भाई आपने वाकई साथ वाला मकान खरीदा है कि नहीं। अगर वो कह देते हां जी मैंने खरीदा है, किसी तरह भी साबित हो जाता है कि साथ वाला मकान वाकई इसने खरीदा है, तो बस मुकदमा पूरा हो गया। अब काजी फैसला कर देगा शफिया के हक में। मकानों की तायीन भी हो गई थी, ये भी पता लग गया था कि ये साथ वाला मकान बिका है, और ये भी पता लग गया कि उसके साथ वाला मकान शफीक है, वो वाकई शुफा कर सकता है। और फिर मुश्तरी पर भी ये भी साबित हो गया कि इसने वो मकान खरीदा है, जो साथ वाला फरोख्त हुआ था वो इसने, जब इसने मकान खरीदा है और वो शुफे का शरीयत ने उसको हक दिया हुआ, वो भी साबित हो चुका। पड़ोसी का भी पता चल गया और खरीदार का भी पता चल गया, तो बस अब काजी जो है फैसला कर देगा शुफे का उसके हक में। और इसी के बीच में वो तलब मुआसबत और तलब इशहाद वगैरह के बारे में भी पूछेगा कि तलब मुआसबत आपने की थी और तलब इशहाद आपने किया था। तो ये है खुलासा मुकदमा। समझ में आ गया भाई? अब देखिए किताब पर, तो कहते हैं वईदा तलबा, और जब वो मुशफी तलब करे शुफे को, सअल अल काजिल खस्म अनहा, तो पूछेगा काजी अल खस्म। खस्म कहते हैं फरीक मुखालिफ को। खस्म किसे कहते हैं? फरीक मुखालिफ, जो मुद्दा अलह है। आप तो शफिया तो है दावा करने वाला, मुद्दाई कौन है? मुद्दाई है, और जिस पर दावा किया वो है मुद्दा अलह। तो शफी हुआ मुद्दाई, दावा करने वाला, और जिस पर दावा किया वो मुद्दा आलय है, मुश्तरी भी हो सकता है और बाय भी हो सकता है। मुकदमे की एक अहम बात याद रखें, आप पढ़ चुके हैं जगह जगह, हदीस में आता है अलबय्यनतु अलल मुद्दाई वल यमीनु अला मन अनकरा। अलबय्यनतु अलल मुद्दाई, बय्यना गवाह, गवाह भाई, गवाह पेश करना मुद्दाई के जिम्मा है। मुद्दाई क्या करेगा? गवाह पेश करेगा। कोई दावा किया कि ये चीज मेरी है तो गवाह लेकर आओ भाई। और गवाह दो आदिल मर्द हो या एक मर्द और दो औरतें, आम मसाइल के अंदर भाई, आम मसाइल में दो मर्द हो और काबिल एतमाद हो, काबिल एतमाद हो, बात समझ में आ रही है? यानी फासिक फाजिर ना हो और नेक आदमी हो, तो दो गवाह होने चाहिए। और इसका यह माना भी नहीं कि फाजिर कोई गवाह फासिक और फाजिर है तो उसकी गवाही बिल्कुल ही काजी रद्द कर दे। उमून आप यही सुनते हैं कि गवाह का आदिल यानी काबिल एतमाद होना जरूरी। याद रखो, जब गवाह काबिल एतमाद हो तो फिर तो काजी को उनकी गवाही के मुताबिक फैसला करना वाजिब हो जाता है। क्या हो जाता है?
वाजिब
हो जाता है। अब अगर दो आदिल गवाह गए, उन्होंने एक मसले में गवाही दे दी और काजी फैसला नहीं करता, तो ये काजी मुजरिम है बइंद अल्लाह। बात समझ में आ गई? काजी का इख्तियार खत्म हो गया। जब दो आदिल गवाहों ने एक मसले में आकर गवाही दे दी तो काजी को क्या करना पड़ेगा? फैसला देना पड़ेगा हर हाल में उसके मुताबिक। तो लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं कि फासिक और फाजिर है, गुनाहगार मुसलमान है, उसकी काजी गवाही कबूल ही नहीं करेगा क्योंकि वो काबिल एतमाद नहीं। नहीं भाई, उसकी गवाही भी काजी कबूल कर सकता है, वो मौका महल को देखा जाएगा भाई। बाज औकात फासिक और फाजिर आदमी भी होता है, बाज गुनाहों में मुबतला तो है, लेकिन दुनिया वालों के सामने उसने अपनी इज्जत बनाई हुई है भाई, वो झूठ नहीं बोलेगा भाई, झूठ से अपने आप को बचाएगा। तो काजी देखे कि ऐसा आदमी है ये, जब सबके सामने एक बात कर रहा है, मालूम हुआ ये सच ही बोल रहा होगा, तो काजी क्या कर सकता है? उसकी गवाही भी कबूल कर सकता है, लेकिन वो काजी की मर्जी है। और काबिल एतमाद हो गवाह तो फिर तो हर हाल में कबूल करना पड़ेगी। बात समझ में आ गई? तो अलबय्यनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकारा। बय्यना यानी गवाह पेश करना मुद्दई के जिम्मा है, जो दावा करने वाला है। वल यमीनु अला मन अनकारा, और कसम उस शख्स पर है जो इनकार करने वाला है। तो याद रखो, गवाह हमेशा इस बात के लिए होते हैं, किसी चीज को साबित करने के लिए होते हैं, नफी के लिए गवाह नहीं होते। गवाह किस लिए होते हैं? किसी चीज को साबित करना है, किसी चीज की नफी के लिए गवाह नहीं। और कसम उसके मुकाबले में अगर मुद्दाई गवाह पेश नहीं कर सका तो फिर जो मुद्दा अलह है, जो उसके दावे का इनकार कर रहा है, उस पर कसम आएगी और वो कसम नफी पर खाएगा। कसम नफी के लिए होती है कि ऐसा नहीं है, मैं कसम खाता हूं। बात समझ में आ रही है? तो बय्यना किसके जिम्मे? मुद्दाई के जिम्मे। और कसम किस पर आएगी? मुद्दालय पर। लिहाजा मुद्दाई को कसम नहीं दी जाएगी, कसम इनकार पर होती है भाई। इस बात के लिए तो क्या चाहिए? गवाह चाहिए, बय्यना चाहिए। एक आदमी कहता है, काजी साहब ये जो कलम इसके पास है ये मेरा है। अब ये देखो दावा कर रहा है, और इस बात कर रहा है या नफी कर रहा है? इस बात कर रहा है कि ये कलम मेरा है। और वो मुद्दा अलैह क्या कहता है? ये कलम इसका नहीं है। तो जो दावा करने वाला है कि ये कलम मेरा है, ये इस बात कर रहा है, तो इसके जिम्मे है बय्यना। ये दो गवाह लेकर आए कि ये कलम इसका है। और अगर ये गवाह पेश नहीं कर सका, फिर काजी क्या करेगा? दूसरे को कसम देगा कि तुम कसम उठाओ ये कलम इसका नहीं है। तो अगर वो कसम उठा लेता है तो उसके हक में काजी फैसला कर देगा, और अगर वो कसम से इनकार कर देता है तो भी दावे मुद्दाई के हक में फैसला कर दिया जाएगा कि ये कसम भी नहीं उठा रहा, मालूम हुआ कलम किसका है? मुद्दाई का ही है भाई। यहां तक बात समझ में आ गई? ये तो हर मुकदमे में आपने याद रखना है, अल बय्यिनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकरा। और मुद्दई और दावा किस पर होता है? इस बात के लिए होता है। और कसम किस पर आती है? मुद्दाले पर, और वो इनकार करने वाला होता है। तो जो भी मसला है आपने उसमें देखना है कि इस बात किसके जिम्मे है, वो मुद्दई बनेगा, और इनकार कौन कर रहा है वो क्या बन जाएगा? मुद्दा अलह, उस पर कसम आएगी, उस पर कसम आएगी। लिहाजा जहां कहीं यह इबारत आ जाए फल कौल लहू, कि कौल उसका मोतबर है, फल कौल शफी, कौल किसका मोतबर? शफी का। इससे आपको एक बात का पता चल गया, क्या मालूम? शफी मुनकिर है। कौल माल हल्फ किसके साथ? कसम के साथ। यानी कसम किसको खिलाई जाएगी? मसलन वैसे कि जिक्र कर रहा हूं, फल कौल लहू, मसलन फल कौल शफी, कौल किसका मोतमद? शफिया का। आपको खुद बखुद पता चल गया, मालूम है शफी मुनकिर है। कोई वैसे मिसाल जिक्र कर रहा हूं कि शफिया क्या है? मुनकिर है, क्योंकि कसम किसको खिलाई जाती है, कौल किसकी माना जाता है? मुनकिर का। बात समझ में आ गई? या मसलन फल कौल लिल बाए, कौल किसका मोतबर? बाए का। मालूम हुआ बाए कौन है? मुनकिर है, और उसका कौल मोतमद, उसका कौल माना जाएगा। वैसे ही माना जाएगा या कसम के साथ? कसम के साथ माना जाएगा। तो जहां कहीं यह इबारत आ जाए आप समझ जाए कि ये मुनकिर है, और कसम के साथ इसकी बात मान ली जाएगी। और दूसरे के जिम्मे बय्यना है भाई, उसकी बात नहीं मानी जाएगी, उसकी कसम को नहीं देखा जाएगा, बल्कि उसके जिम्मे क्या है? बय्यना है। और फिर मुकदमे की एक और कीमती बात याद रखना, काजी गाइब के खिलाफ मुकदमा नहीं सुन सकता। आपने जैद पर दावा किया है तो मुकदमा तभी आगे चलेगा जब जैद वहां पर हाजिर हो, जैद को बुलवाया जाएगा फिर मुकदमा चलेगा। काजी गाइब के खिलाफ मुकदमा नहीं सुन सकता, उसके सामने मुकदमा चलाया जाएगा। उसके खिलाफ बय्यना नहीं सुन सकता काजी, जैद नहीं है और उसके खिलाफ बय्यना साहब पेश की जा रही है, नहीं भाई काजी नहीं सुन सकता, उसके सामने बय्यना पेश किया जाएगा। और उसके खिलाफ फैसला नहीं कर सकता काजी भाई, जब तक वो मुद्दाले मौजूद ना हो। बात अच्छी तरह समझ में आ गई? अब देखिए किताब पर, व इदा तलबा, और जब शफिया तलब करे यानी शुफा को, सअलल काजी, तो काजी पूछेगा अल खस्म अनहा, वो जो फरीक मुखालिफ है यानी मुद्दा अलह है, अनहा उस घर के बारे में। हाजमी राजे है अद्दार को, قاضی فریق مخالف، فریق مخالف کون ہے؟ مدعی ہے، وہ بائے بھی ہو سکتا ہے اور مشتری بھی ہو سکتا ہے، اس سے پوچھے گا عنہا، کس کے بارے میں؟ اس گھر کے بارے میں. کیا مانا اس گھر کے بارے میں؟ یعنی وہ جو شفیع جس گھر کی وجہ سے شفیع شفا کر رہا ہے، شفیع کس گھر کی وجہ سے شفا کر رہا ہے؟ اپنے گھر کی وجہ سے. شفیع اس کا پڑوسی ہے تو شفا کر سکتا ہے، پڑوسی نہیں تو شفا کر سکتا ہے
نہیں.
تو لہذا اس شفیع کے گھر کے بارے میں پوچھے گا قاضی کس سے؟ بھئی دیکھیے نا، مقدمہ چل رہا ہے، سب سے پہلے تو وہ زمینوں کی تعین ہو گئی، اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ زمینوں کا مسئلہ جب بھی آپ کے پاس آئے گا تو آپ پہلے زمینوں کی تعین کروائیں گے، بھئی کس زمین کی بات ہو رہی ہے، کس کے بارے میں جھگڑا ہے، پہلے پتا تو چلے، صورت سمجھ میں آ رہی ہے. تو زمینوں کے مسئلے میں ہمیشہ پہلے کیا کی جائے گی؟ ان کی تعین کی جائے گی. اس کو وہ ذکر نہیں کر رہے، بس شفا سے جو متعلق ہے وہ ذکر کر رہے ہیں. اور شفا کے اندر میں نے بتایا سب سے پہلے کیا کریں گے جی؟ پہلے یہ پتا لگائیں گے کہ جو زمین فروخت کی گئی ہے یہ آدمی اس پر کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ شفا. تو پہلے پتا تو چلاؤ کہ یہ ساتھ والی زمین اس کی ہے بھی یا نہیں، اس کو یہ جار بھی ہے کہ نہیں، اس کو شفے کا حق بھی ہے کہ نہیں. تو لہذا اس کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا، تحقیق کی جائے گی کہ یہ واقعی شفیع بن سکتا ہے، یہ واقعی پڑوسی ہے کہ پڑوسی نہیں. اب اس کی صورت یہ ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ مثلا آپ ہیں شفیع اور آپ کے ساتھ والا مکان زید نے خریدا ہے، توجہ ہے، آپ کون ہیں؟ شفیع. آپ کے ساتھ والا مکان کس نے خریدا؟ زید نے. اب زید کو آپ قاضی کے پاس لے آئے اور اب قاضی یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ وہ ساتھ والا گھر آپ کا ہے یا نہیں، یعنی اگر آپ کا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ کا حق شفا بنتا ہے. تو لہذا قاضی آپ سے پہلے نہیں پوچھے گا، قاضی زید سے پوچھے گا، ہاں بھائی بتاؤ یہ جو مکان آپ، یہ جو ساتھ والا گھر ہے یہ واقعی اس شفیع کا ہے، اس آدمی کا ہے جس کی وجہ سے یہ کیا کر رہا ہے؟ شفا کر رہا ہے. اگر زید کہہ دیتا ہے جی ہاں وہ گھر اسی کا ہے، تو ثابت ہو گیا یا نہیں ثابت ہو گیا؟ فریق مخالف مان گیا، فریق مخالف بھی مان گیا کہ وہ ساتھ والا گھر آپ کا ہے. اور اگر وہ کہتا ہے نہیں مجھے تو پتا نہیں، وہ اقرار ہی نہیں کرتا، تو اب قاضی آپ کو کہے گا ہاں بھائی گواہ پیش کرو کہ وہ ساتھ والا گھر تمہارا ہے، تو آپ کے ذمہ گواہ آ جائیں گے. اور اگر آپ گواہ پیش نہیں کر سکتے تو پھر وہ جو مدعی ہے اس پر قسم آئے گی کہ تم قسم اٹھاؤ کہ میں نہیں جانتا، دیکھو قسم انکار پر آ رہی، کہ میں نہیں جانتا کہ یہ گھر اس کا ہے، میں نہیں جانتا کہ یہ گھر اس کا ہے. بھئی یہ نہیں کہیں گے، یہ قسم نہیں کھلائیں گے کہ یہ گھر اس کا ہے یا یہ گھر اس کا نہیں ہے. اس کا تو زید کو پتا نہیں ہے، زید تو اپنے علم پہ قسم اٹھا سکتا ہے کہ مجھے علم ہے یا علم نہیں ہے، قطعی طور پر یہ مالک ہے یا مالک نہیں. یہ تو بے شک اس گھر میں رہتا بھی ہو تو کیا رہنے سے یہ مالک ثابت ہو جاتا ہے؟ ہو سکتا ہے کرائے پر رہتا ہو، ہو سکتا ہے اس کے کسی اور عزیز کا، اس نے اس کو ویسے دیا ہوا ہے رہنے کے لیے. تو قطعی طور پر یہ مالک ہے یا مالک نہیں یہ تو زید کو پتا نہیں ہو سکتا، لہذا اس سے قطعی یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ مالک ہے یا مالک نہیں، بلکہ قسم اس بات پر دی جائے گی کہ تمہیں علم ہے یا علم نہیں ہے، تم اپنے علم پر قسم اٹھاؤ. تو لہذا پھر سنیں، سب سے پہلے قاضی کیا کرے گا؟ وہ ساتھ والے گھر کا پتہ لگائیں گے کہ اس کو شفے کا حق ہے یا حق نہیں. تو لہذا پہلے مدعی سے پوچھے گا ہاں بھائی بتاؤ یہ ساتھ والا گھر اسی کا ہے، یہ جو دعویٰ کرنے والا ہے. اگر وہ کہہ دیتا ہے ہاں وہ ساتھ والا گھر اسی کا ہے، پھر تو اس سے گواہ لینے کی بھی ضرورت نہیں، گواہ طلب کرنے کی ضرورت بھی نہیں. اگر وہ اقرار نہیں کرتا پھر قاضی سے کیا کہے گا؟ دو گواہ پیش کرو کہ وہ ساتھ والا گھر تمہارا ہے جس کی وجہ سے تم شفا کر رہے ہو. अगर ये गवाह पेश कर देता है तो भी साबित हो गया, अगर ये इसके पास गवाह भी नहीं है इस बात पर तो फिर काजी जो मुद्दा ले है उससे कसम लेगा, और कसम किस चीज पर लेगा? इनकार पर, और इनकार भी किस चीज का? इलम का, कि मेरे मैं नहीं जानता कि ये इसका घर है। काजी साहब मैं कसम खाता हूं कि मुझे पता नहीं है कि ये इसका घर है। अगर वो कसम उठा लेता है तो मुकदमा खारिज हो गया, भाई इसके बाद गवाह भी नहीं है, साथ वाला घर मेरा है। बात समझ में आ गई? तो साथ वाला घर ही नहीं साबित हो सका इसका, तो मुकदमा खत्म हो गया। और अगर वो इनकार कर दे, नहीं जी मैं कसम नहीं उठाऊंगा, आजकल तो लोग हर बात पे कसम उठाते हैं, न सच झूठ को देखते हैं न किसी और बात को। कसम कितनी अजीम चीज है, एक मोमिन की शान। मोमिन तो वैसे भी झूठ नहीं बोलता, और कसम का मामला तो बड़ा ही सख्त है भाई, बड़ा ही सख्त है। बेशक जायदाद सब कुछ हाथ से निकल जाए, झूठी कसम खाने को मोमिन कभी नहीं तैयार होता। तो उसने भी इनकार कर दिया कि मैं कसम नहीं उठा सकता काजी साहब। अगर उसने इनकार कर दिया तो घर इसका साबित हो गया, और अगर उसने कसम खा ली तो फिर मुकदमा क्या हो गया? खारिज हो गया। बात समझ में आ गई? इनकार किया उसने कसम उठाने से तो घर शफिया का साथ वाला साबित हो गया, और अगर उसने कसम उठा ली तो मुकदमा खारिज हो गया। कसम उठा ली कि मेरे मैं जानता ये इस घर का मालिक नहीं है, बस फैसला हो गया भाई खत्म। जब मालिक ही नहीं है तो ये कहां से ये शुफा कर सकता है? देखिए भाई अब किताब पर, व ईदा तलबा, और जब शफिया तलब करे, सअल अल काजिल खस्म अनहा, तो काजी पूछेगा फरीक मुखालिफ यानी मुद्दा अलैह से, अनहा उस घर के बारे में। कौन से घर के बारे में? जो शफिया का घर है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है? शुफा कर रहा है। और क्या पूछेगा उस घर के बारे में? उसके मालिक होने के बारे में पूछेगा। यही बयान कर रहे हैं, अयान मालिकियति शफीई, उस शफिया के मालिक होने के बारे में। अदारा, वो घर, अल मशफूआ बिहा, जिसकी वजह से वो शुफा कर रहा है। तर्जमा समझ में आ रहा है? मालिकियत, मालिक। भाई याद रखो, सिफत के सीगे के आखिर में याए मुशद्दद और गोल ता मिलाकर उससे मस्दर बना लेते हैं। क्या करते हैं? सिफत के सीगे के आखिर में याए मुशद्दद और गोल ता जोड़कर उसे मस्दर बना लिया जाता है। जैसे जारिब, जारिब का क्या माना? पिटाई करने वाला। ये सिफत का सीगा है, कोई आदमी क्या है? पिटाई करने वाला। तो जारिब से मैं मस्दर बनाना चाहता हूं, तो आखिर में मैंने याए मुशद्दद और गोलता मिला दी, जारिबियत। अब ये मस्दर बन गया। जारिबियत का माना है जारिब होना। भाई मस्दर के आखिर में क्या आता है? ना आता है ना, खाना पीना सोना जागना, ये सब क्या है? मस्दर है। तो देखो जारिब होना, देखो क्या बन गया? मस्दर। मजरूब, मजरूब से मैं मस्दर बनाना चाहता हूं, कैसे बनाऊंगा? मजरूबियत, मजरूब होना। मालिक से मैं मस्दर बनाना चाहता हूं, मालिकियत यानी मालिक होना। अब बात समझ में आ गई? तो यहां भी इसी तरह अन मालिकियति शफीई, शफीया के मालिक होने के बारे में, मालिक होने। जब ये मस्तर बन गया, और आप जानते हैं मस्तर फेल की तरह अमल करता है, फेल की तरह, जैसे फेल अपने फाइल को रफा देता है और मफूल को नसब देता है, इसी तरह मस्तर भी अमल करता है, अपने फाइल को रफा और अपने मफूल को नसब देता है। तो जो मालिक होगा वो फाइल होगा, और जो चीज ममलूक होगी वो क्या होगी? मफूल। तो यहां देखो शफिया कौन है? मालिक है। और किस चीज का मालिक है? अदारा। ये क्या है? मफूल। तो ये अदारा को नसब कौन दे रहा है? वो मालिकियत, तो जो मस्तर है ना वो अमल कर रहा है शफिया की तरफ। ये शफी इसका फाइल है, मालिक कौन है? शफी है। लेकिन मस्तर की फाइल की तरफ कभी इजाफत कर देते हैं, यहां भी इजाफत हो रही है। अन मालिकी यति शफी, यानी शफी का मालिक होना, भाई किस चीज का मालिक होना, अद्दार अल मशफुआ बिहा, वो घर जिसकी वजह से वो शुफा कर रहा है। तो सअल अल काज़िल खस्म अनहा, तो काजी जो है मुद्दाले से फरीक मुखालिफ से पूछेगा उस घर के बारे में, उस घर के बारे में पूछेगा। क्या माना, कहते हैं अन मालिकियत शफी दार अल मशफुआ बिहा, यानी शफी के उस दार मशफू के मालिक होने के बारे में पूछेगा भाई। फ इन अकर्रा, अगर उसने इकरार कर लिया, फरीक मुखालिफ ने इकरार कर लिया भाई किस चीज का, बिमिल की मा शुफिया बिही, मा से मुराद है वो दार, मा मौसूला है, मा वो घर शुफिया बिही जिसकी वजह से क्या किया जा रहा है, जिसकी वजह से शुफा किया गया है। फइन अकर्रा बिमिल की मा से मुराद क्या है, घर, लिहाजा तर्जमे में यहां हम घर का लफ्ज ले आएंगे। फइन अकर्रा, उसने अगर इकरार कर लिया, बिमिल की मा शुफिया बिही, उस घर का जिसकी वजह से शुफा किया गया है, अगर उसने इकरार कर लिया, मुद्दाले ने इकरार कर लिया कि वाकई वो घर इसका है, अगर फइन अकर्रा बिमिल की मा शुफिया बिही, बस उसने अगर इकरार कर लिया उस घर के मालिक होने का जिसकी वजह से शुफा किया गया है, मालिक होने का इकरार कर लिया, ये नहीं कहता मेरा घर है, यानी ये इस शफी के, इसके मालिक होने का इकरार कर लिया। और नकला अनिल हल्फी, नकला का माना इनकार करना, या उसने क्या किया, इनकार कर दिया, अनिल हल्फी अलल इल्मी, अपने इलम पर कसम उठाने से, कौन सा, किस चीज का इलम, बी अन्नहु मालिकु कजा, के वो ऐसे घर का मालिक, वो इस घर का मालिक है, इससे उसने इनकार कर दिया। भाई तीन सूरतें बयान हो रही हैं ना, क्या साबित करना है कि साथ वाला घर किसका है, शफिया का। तो सबसे पहले काजी किससे पूछेगा, मुद्दाले से, कि हां भाई वो साथ वाला घर इसका है, वो अगर इकरार कर ले तो साबित हो गई बात, आगे चलेगी, या अगर वो इकरार नहीं करता तो फिर काजी दूसरे से क्या पूछेगा, गवाह पेश करो, अगर वो गवाह पेश कर देता है तो भी साबित हो गया, अगर गवाह पेश नहीं कर सका तो दूसरे को क्या कसम, दूसरे को क्या किया जाएगा, कसम, अगर वो कसम से इनकार कर दे तो भी वो घर का मालिक शफिया साबित हो गया। देखो तीनों वो सूरतें, वो तीनों यहां जिक्र कर रहे हैं, फइन अकर्रा बिमिल की मा शुफिया बिही, बस उसने अगर इकरार कर दिया उस घर के मालिक होने का जिसकी वजह से शुफा किया गया है, और नकला अनिल हल्फी, या उसने कसम से क्या कर दिया, इनकार कर दिया, कसम किस चीज की, अलल इल्मी बि अन्नहु मालिकु कज़ा, इस बात के इलम पर कि वो उस घर का मालिक है, इस कसम से उसने इनकार कर दिया। वलो बरहाना शफीओ, अगर शफिया ने बय्यना कायम कर दी, बरहाना का क्या माना, बय्यना कायम कर दी, गवाह पेश कर दिए, तीनों वो सूरतें, इकरार कर ले तो भी मालिक साबित हो गया, शफिया मालिक साबित, अगर कसम से इनकार कर दे तो भी शफिया मालिक साबित हो गया, और अगर वो गवाह पेश कर दे तो भी मालिक साबित हो गया। तीनों सूरतें यहां जिक्र हो गई, मैंने तरतीब भी जिक्र कर दी, तरीका समझ में आया। तो वलाव बरहाना शफी, अगर गवाह, अगर बय्यना कायम कर दी, गवाह पेश कर दिए शफिया ने, तो घर तो साबित हो गया। अब अगली बात आ गई, सअलहु अन शिराई, तो काजी उस मुद्दाले से, उस फरीक मुखालिफ से पूछेगा अन शिराई, घर खरीदने के बारे में, ये साथ वाला घर तो शफिया का है, मालूम है उसको हक शुफा मिलेगा, अब ये बताओ ये घर तुमने खरीदा है, साथ वाला घर तुमने खरीद, ये माना सअलहु अन शिराई, काजी उससे पूछेगा, उस फरीके मुखालिफ से, मुदाले से, अन शिराई, उस घर के खरीदने के बारे में। फइन अकर्रा बिही, फिर यहां वही तीन सूरतें, काजी उससे पूछेगा हां बताओ ये मकान नंबर एक तो शफिया का है, ये मकान नंबर दो तुम मुझे बताओ साथ वाला, ये तुमने खरीदा है, वही सूरतें अब आएंगी, वो इकरार कर लेता है हां जी मैंने खरीदा है, तो काजी क्या करेगा, शफिया के लिए फैसला कर दे, या वो इकरार नहीं करता तो फिर काजी क्या करेगा, शफी से कहेगा गवाह पेश करो। सूरत समझ में आ रही है? तो भी क्या कर देगा, अगर वो गवाह पेश कर दे तो भी काजी उसके लिए फैसला कर देगा, अगर वो गवाह पेश नहीं कर सका तो फिर क्या किया जाएगा, उस मुद्दालय को कसम दी जाएगी। अगर वो कसम से इनकार कर देता है तो भी फैसला किसके हक में कर दिया जाएगा, शफी के हक में कर दिया जाएगा, और अगर वो कसम उठा लेता है तो फिर उसके हक में फैसला हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं फई इन अकर रबी ही, अगर उसने क्या किया, इकरार कर लिया उस खरीदारी का, उस खरीदने का, और नकल अनिल हल्फ अलल हासिली अविस्सबबी, या उसने इनकार कर दिया कसम से, कसम अलल हासिली, हासिल कहते हैं नतीजे को, अविस्सबबी या सबब। अब यहां देखो भाई, यहां थोड़ी सी तफसील बयान करेंगे, तफसील वो ही कुछ मैंने बयान कर दी। अब हमने खरीदारी का पूछना है, फिर दोहरा लो, तो मुश्तरी से क्या पूछेगा काजी, क्या आप बताओ ये आपने घर खरीदा है साथ वाला घर, अगर वो इकरार कर ले तो काजी किसके हक में फैसला कर देगा, शफी। अगर वो इकरार नहीं करता तो काजी शफी से गवाह तलब करेगा, अगर वो गवाह कायम कर दे तो भी काजी उसके हक में फैसला कर दे, अगर वो गवाह भी उसके पेश नहीं कर सकता फिर कसम दी जाएगी। अब कसम क्या दी जाएगी, इसमें तफसील है। एक है कसम हासिल पर यानी नतीजे पर, और एक है कसम सबब पर, कसम सब। ये शफी शुफा कर रहा है, सबब क्या है, सबब शुफे का यह है कि शफी के साथ वाला घर फरोख्त हुआ है, शफी के घर के साथ वाला घर फरोख्त हुआ है, यह है शुफे का सबब। यह बैअ न होती तो शुफा होना था नहीं, शुफा साबित ही किसके बाद होता है, बैअ। तो शुफे का एक है सबब और एक है उसका नतीजा। साथ वाला घर बिका तो यह सबब है किसका, शुफे का, और नतीजा इसका यह निकला कि शफी को शुफे का हक मिल गया। शुफा आया किसकी वजह से, बैअ की वजह से, और जब बैअ हो गई तो नतीजा क्या निकला, शफी को शुफे का हक मिल गया। तवज्जो है, फिर दोहराओ, एक है सबब एक है हासिल और नतीजा। सबब क्या, बैअ, और हासिल क्या, हक शुफा उसको मिल गया, बैअ हुई तो इसको नतीजे में क्या मिल गया, हक शुफा। अब उसको किस चीज पर कसम दें, सबब पर कसम दें या हासिल पे नतीजे पे कसम दें। कहते हैं भाई देखो, अगर यहां हमारा और इमाम शाफी रहमतुल्लाह का इख्तिलाफ है, हमारे नजदीक शफिया तीन किस्म पर हैं, शरीक फी नफ्सिल मबिया वो भी शुफा कर सकता है, शरीक फी हकिल मबिया वो भी शुफा कर सकता है, और जार मुलासिक भी शुफा कर सकता है, जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक दोनों शरीक जो हैं वो तो शुफा कर सकते हैं, जार मुलासिक को शुफे का हक ही नहीं। मालूम हुआ शरीक फी नफ्सिल मबिया और शरीक फी हकिल मबिया, ये दोनों जो शरीक हैं ये इन दोनों को शुफे के हक है, ये मसला मुत्तफकुन अलैह है, इस पर इत्तेफाक है हमारा और इमाम शाफी रहमतुल्लाह। तवज्जो है, इन दोनों शरीकों को शुफे का हक होता है, इसमें इत्तेफाक है किसका, हमारा और इमाम शाफी रहमतुल्लाह। तो ये दो शफिया बन सकते हैं, ये मसला है मुत्तफकुन अलैह। और जार के मसले में हम कहते हैं ये शफिया बन सकता है, इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं ये शफिया नहीं हो सकता। तो ये हुआ मुख्तलफुन फी, ये क्या हुआ, मुख्तलफुन फी। तो दो शफिया जो है वो तो है मुत्तफकुन अलैह, और एक शफिया जो है वो है मुख्तलफ फी, मुख्तलफ उसके बारे में इख्तिलाफ किया गया है, और दो है मुत्तफकुन अलैह कि उन पर इत्तेफाक किया गया है। तो कहते हैं भाई जब आप कसम देने लगे तो अगर मुत्तफकुन अलैह वाली सूरत हुई, मुत्तफकुन अले वाली सूरत हुई तो कसम हासिल पे दे सकते हो, और अगर मुख्तलफ उन फी वाली सूरत हुई तो कसम फिर सबब पर ही देना, हासिल पे कसम न देना। तवज्जो है? अगर कौन सी सूरत हुई मुत्तफकुन अले तो फिर कसम किस पे दे सकते हो? हासिल पे कसम दे सकते हो। हासिल पे मसलन शफी कहता है जी मैं इसके साथ शरीक हूं नफ्से मबिया में, या वो जो शफी है वो कहता है मैं शरीक हूं हक मबिया में, अब उसको कसम खिलवानी है तो काजी उसको कह सकता है कसम उठाओ इस बात पर कि ये तुम्हारे घर पर शुफे का हकदार नहीं है, ये तुम्हारे घर पर शुफे, तुमने जो जमीन खरीदी है ये उस पर शुफ, कसम इनकार पे होती है ना, तो इनकार पे कसम देंगे, तुम कसम उठाओ कि ये तुम्हारे घर पर शुफे का हकदार नहीं है। किस चीज पर कसम उठवाई जा रही है? शुफे के हक पर, शुफे के हकदार होने पर। और हकदार होना क्या है, हासिल है या सबब है?
हासिल।
सबब तो क्या था? बैअ थी। बैअ की बात अभी मैं नहीं कर रहा, हासिल यानी हकदार होने पर। तुम कसम उठाओ कि तुम्हारे घर पर तुमने जो खरीदा है उस पर शुफे का हकदार नहीं है, इस घर पर ये शुफे का हकदार नहीं है। अब वो चाहे हनफी हो चाहे शाफई हो, दोनों सूरतों में शफी शरीक है या तो नफ्स मबीहा में, या दोनों सूरतों में वो शुफे का हकदार बनता है या नहीं बनता? हकदार बनता है। लिहाजा अब इस कसम, ये इस कसम पर फैसला हो जाएगा, वो चाहे हनफी हुआ, वो चाहे इमाम शाफी रहमतुल्लाह के मजहब पर कसम उठाए, चाहे हमारे मजहब पर कसम उठाए, दोनों सूरतों में उसको क्या बनता है? शुफे का हक बनता है। लिहाजा वो कसम झूठी कसम से बचेगा भाई, क्योंकि उसको पता है इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक भी इसको शुफे का हक बनता है और अहनाफ के नजदीक भी इसको शुफे का, लिहाजा वो झूठी कसम नहीं उठाएगा वो। और अगर आप उसको हासिल पर कसम देते हैं और जो शुफा करने वाला है वो है जारे मुलासिक, जारे साथ घर उसका है, अब अगर आप उसको हासिल पे कसम देते हैं कि कसम उठाओ इसको तुम्हारे घर पर शुफे का हक नहीं है, तुम कसम उठाओ, तवज्जो है, ये शफीक शुफा कर रहा है किस वजह से कि ये क्या है, जारे मुलासिक, अब आप उसको हासिल पे कसम देना चाहते हैं, मसला कौन सा है, मुख्तलफुन फी है या मुत्तफकुन अलैह है? मुख्तलफ ही है, क्योंकि जार का इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक तो जार को शुफे का हक ही नहीं है, अब आप उसको कहते हैं कसम उठाओ कि इसको शुफे का हक नहीं, वो इमाम शाफी रहमतुल्लाह के मजहब पे कसम उठा लेता है कि वल्लाह काजी साहब इसको शुफे का हक नहीं है। ये किस मजहब पे कसम उठा रहा है, और झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है? सच बोल रहा है, तो वो तो कसम उठा लेगा भाई। तो आपने कसम हासिल पर कसम मुत्तफकुन अलैह मसले में देनी है, मुख्तलफुन फी में नहीं देनी। और जब मुख्तलफुन फी मसला हो तो कसम किस पर दो? सबब पर दो। कसम ये उठवाओ कि कसम उठाओ तुमने ये घर नहीं खरीदा, बस इतनी बात उससे पूछ लो। अगर वो कहता है मैंने खरीदा है, फिर तो ये जारे मुलासिक है, ये जब खरीदा है तो इस जारे मुलासिक को शुफे का हक मिल गया कि नहीं मिल गया, लिहाजा शुफा साबित हो गया, ये शुफा इसके हक में फैसला कर देगा काजी। बात समझ में आ गई? तो मुत्तफकुन अलैह सूरत में कसम किस पर देनी है? हासिल पर। और मुख्तलफ फी सूरत में कसम सिर्फ किस पर दो? सबब पर दो। देखिए भाई, सअलहू अन शिराई, काजी उससे पूछेगा खरीदने के बारे में, फइन अकर्र बिही, अगर ने उसने उसका इकरार कर लिया, और नकल अनिल हल्फ अलल हासिली अवि सबबी, या उसने इनकार कर दिया कसम से, अलल हासिली, कसम किस पर? हासिल पर, यानी नतीजे पर, अवि सबबी या सबब पर, हासिल या सबब पर जो कसम थी उससे इनकार कर दिया। अब ये हासिल पर कब कसम खिलाएंगे और सबब पर कब, वो शारह बतलाने लगे, कहते हैं ए आलम जान ले अन्न सबूत शुफत इनकाना मुत्तफकन अलैही, कि शुफे का सबूत अगर मुत्तफकुन अलैह हो तो यु हल्लफ अल हासिली, तो उसको कसम दी जाएगी अलल हासिल, किस पर? हासिल यानी नतीजे पर, कि बिल्लाह मस्तहक हादा शफी और शुफाता अलैया, कि वल्लाह मुस्तहक नहीं है ये शफी मेरे ऊपर शुफे का। वह इनका ना मुख्तलफन फी, और अगर वो मसला मुख्तलफ फी था, सबूत शुफा क्या था? मुख्तलफ फी था, का शुफातिल जीवारी, जैसे कि शुफाए जीवार, पड़ोस की वजह से जो शुफा होता है, तो यू हल्लफू अला सबबी, तो उसको कसम दी जाएगी सबब पर, कि बिल्लाही मश्तरे तु हाजिही दारा, कि वल्लाह मैंने इस घर को नहीं खरीदा। लिया नहू रुबमा यहलिफ अल हासिल बी मजहबी शाफी रहमल्ला, इसलिए क्योंकि बसावकात वो कसम उठा लेगा हासिल पर मजहब शाफी के साथ। वकद सबका फी किताब दावा, और तहकीक की बात किताब दावा में गुजर चुकी है, पीछे इसी किताब के अंदर ये शरह विकाया के गुजश्ता हिस्से में आया था, वहां पर यह बात बयान हो चुकी है कि जब भी मुख्तलफुन फी मसला हो तो कसम किस पर उठवाओ? सबब पर, और जब भी मुत्तफकुन अलैह मसला हो तो फिर हासिल पर भी कसम उठाने में कोई हरज नहीं, हासिल पर भी कसम दे सकते हो। बात समझ में आ गई? तो इकरार कर लिया तो भी शिरा साबित हो गई, शुफा साबित हो गया, इनकार कर लिया कसम से तो भी शुफा। तीसरी सूरत थी औ बरहाना शफी, या शफिया ने बैयना कायम कर दी, दो गवाह पेश कर दिए, तो कुजिया लहू बिहा, तो उसके लिए शुफे का फैसला कर दिया जाएगा। बिहा जमीर आ जाए शुफे को, कुजिया लहू बिहा, तो फैसला कर दिया जाएगा शफी के लिए उस शुफे का। वह इल्लम युहज़िर समना वक्त दावा, अगरचे उसने समन हाजिर न किए हो दावा के वक्त, अगरचे उसने। चलिए बस करते हैं भाई, बाकी फिर इंशाल्लाह अगले सबक में कर लेंगे। यहां तक बात सबको अच्छी तरह समझ में आ गई, हल हो गया? कोई बात ऐसी तो नहीं जो समझ में ना आई हो? भाई देखिए, हासिल और सबब पर कसम उठवाते हैं, बस आपने ये देखना है कि वो कसम में कोई तावील न कर जाए, कोई तावील न कर जाए। तावील कर कसम भी उठा लेगा, और तावील के जरिए वो मसलन इमाम, देखो शुफे का हक इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक किस किस को है? शरीक फी नफ्सिल मबिया को भी है, और शरीक फी हकिल मबिया को भी है, और हमारे नजदीक भी है। लेकिन जार को शुफे का हक हमारे नजदीक है, इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक नहीं है। अब हम पूछ रहे हैं उससे खरीदारी के बारे में कि ये बताओ, ये साथ वाला घर आपने खरीदा है, अगर वो इकरार कर ले तो शुफा क्या हुआ? साबित हो गया। या शफी क्या कर दे? दो गवाह कायम कर दे तो भी शुफा साबित हो गया। और या उस वो कसम से इनकार कर दे तो भी शुफा साबित हो गया। तो अब कसम क्या कसम उसको दी जाएगी? क्योंकि कसम, या तो एक सीधा आप उससे पूछ लें कि कसम उठाओ तुमने ये घर नहीं खरीदा, और ये कसम भी उठवा सकते हैं उससे कि काजी साहब वल्लाह इसको मेरे ऊपर शुफे का हक नहीं है। तो दोनों सबब पर भी कसम दी जा सकती है और हासिल पर भी। सबब क्या? शुफे का सबब क्या है? बया। बया होगी तो शुफा आएगा ना, बया नहीं तो शुफा भी नहीं। शुरू में आया था तजिबू बादल बया, शुफा कब साबित होता है? बया के बाद। तो शुफे का सबब क्या? बया। और हासिल क्या? जब बया हो जाएगी तो शफी को क्या हासिल हो जाएगा? हके शुफा। तो आप सबब पर भी कसम दे सकते हैं, आप काजी हैं, और आप नतीजे पर भी कसम दे सकते, आप जिस तरह भी कसम देना चाहें दे सकते हैं। लेकिन ये देख लेना कि मसला मुख्तलफुन फी है या मुत्तफकुन अलैह। अगर मुख्तलफ फी हो तो कसम हमेशा सबब पर देना, कसम सबब पर देना, और अगर मसला मुत्तफकुन अलैह हो तो फिर नतीजे पर भी कसम दे सकते हो। बात समझ में आ गई? तो अगर आप उसको हासिल पर कसम देते हैं, और वो किस मजहब पर कसम उठा लेता है? इमाम शाफी रहमतुल्लाह के मजहब पर कसम उठा लेगा। वो कहेगा वल्लाह काजी साहब इसको शुफे का हक नहीं है, क्योंकि वो तो जार मुलासिक है और इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक भी जार मुलासिक को तो शुबे का हक होता ही नहीं, तो उसने सच्ची कसम उठाई या झूठी कसम उठाई? बात तो सच्ची कसम तो उसने सच्ची उठा ली, लेकिन काजी समझा शायद ये हमारे मजहब पर कसम उठा रहा है, लेकिन उसने तो किसके मजहब पर कसम उठा ली? इमाम शाफी रहमतुल्लाह के। तो शफी का हक मारा गया कि नहीं मारा गया? शफी का हक मारा गया भाई, ये तो उसके लिए रास्ता आपने खोल दिया, तो रास्ता ना खोलो ऐसा, बल्कि इस सूरत में किस चीज पर कसम दो उसको? सबब पर। ये बताओ कि ये जमीन तुमने खरीदी है या नहीं? वो कसम उठाता है कि वल्लाह काजी साहब ये जमीन मैंने नहीं खरीदी, फिर तो ठीक है, जब खरीदी नहीं है बात ही खत्म हो गई, शुफा खत्म हो गया। लेकिन अगर वो कसम से इनकार कर देता है, नहीं ये कसम तो मैं नहीं उठाऊंगा, इसका मतलब है इसने जमीन खरीदी है। जब जमीन खरीदी है तो शफी हमारे नजदीक चाहे शरीक हो फी नफ्सिल मबी, चाहे शरीक फी हकिल मबी हो, चाहे जारे मुलासिक हो, तीनों सूरतें इसके अंदर आ गई और शुफा साबित हो जाएगा। बात अच्छी तरह समझ में आ गई? तो यहां मुख्तलिफ मसाइल आएंगे, वहां पर एक मसले का सबब होता है, एक मसले का हासिल होता है। तो काजी ने गौर करना है, फुकाहा तसरीह करते हैं मौका ब मौका जहां ऐसे मौके आते हैं कि सबब पर भी कसम दे सकते हैं और हासिल पर भी कसम दे सकते हैं। बज़ाहिर तो एक ही बात लगती है ना, आप घर के खरीदारी की बात कर लें या आप शुफे के हक की बात कर लें, बज़ाहिर दोनों एक जैसे लगते हैं। बज़ाहिर दोनों खरीदेगा तो क्या आएगा? हक शुफ आएगा, लेकिन आपने पढ़ लिया कि दोनों में फर्क आ रहा है, क्योंकि कुछ मसाइल बाज सूरतों में इख्तिलाफ है और बाज में इत्तेफाक है, मसला उसे बदल रहा है। तो आपने सबब को भी देखना है और हासिल को भी, और फिर अगर वो मुत्तफ़क़ुन अलैह मसला है तो फिर आप बेशक हासिल पर कसम दे दें, नतीजे पर कसम दे दें, और अगर मुख्तलफ ही है तो फिर सबब पर कसम देना, वरना हो सकता है वो तावीलन दूसरे मजहब पर कसम उठा ले। भाई बात समझ में आ गई? चलिए बस वह हादा अल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।